थे स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से उत्पत्ति नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। आशा करते हैं कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं ये मधुर संगीत रचना।
प्रिय मित्र, इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। इन दिनों हम उत्पत्ति की पुस्तक और उसके 9वें अध्याय से अपना अध्ययन कर रहे हैं, और पिछले अध्ययन में हम नूह और उसके पुत्रों के पाप को देख रहे थे कि नूह मतवाला हुआ और उसके पुत्र हाम ने पिता को निर्वस्त्र देखा, और जब नूह को होश आया तो उसने कनान को शापित किया, जिसे परमेश्वर के वचन में लिखा गया क्योंकि परमेश्वर अपने उद्देश्य को सुरक्षित रखना चाहते थे। तो आइए अब हम उसके आगे के विचारों को देखें। मित्रों, हमें नूह के पाप का वर्णन क्यों दिया गया है? इसके विषय में मैं पहले ही संकेत दे चुका हूं कि मूसा के समय में जब इसराइल की संतान कनान देश में प्रवेश करने के लिए जा रही थी, तब परमेश्वर ने उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए यह वर्णन दिया ताकि वे लोग जान जाएं कि परमेश्वर ने कनान को शापित किया है और उसने अपना न्याय उनके संतानों के लिए ठहराया है। इसे अधिकाई से समझने के लिए आप पूरे पुराने नियम की पूर्ण पुस्तकों को पढ़ें, और साथ ही यह कुछ बाहरी इतिहास की पुस्तकों को भी अवश्य पढ़ें कि कैसे यह न्याय पूर्ण हुआ है। कनानी लोग पर्याप्त मात्रा में विलुप्त हो चुके हैं। मित्रों, नूह के पाप को लिखने के प्रति परमेश्वर के आगे कोई कारण था, जिसे हम रोमियो के पत्री 15 अध्याय उसके 4 पद में पढ़ते हैं। पूर्व काल में कुछ लिखा गया था, वह हमारी ही शिक्षा के लिए लिखा गया, जिससे धैर्य और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा हम आशा रखें। यह इसलिए लिखा गया कि आप और मैं शरीर की उन कमजोरियों को जानें। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, आत्मा तो तैयार है परंतु देह दुर्बल है, और गलतियों की पत्री उसके 2 अध्याय और 16 पद में इसे स्पष्ट किया गया है कि व्यवस्था का पालन करने से कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं ठहराया जाएगा, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई भी मनुष्य धर्मी नहीं ठहराया जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने हमें यहाँ पर एक व्यक्ति की कहानी दे दी है कि वह पाप में गिरा जो शरीर की दुर्बलता को प्रकट करता है। नूह को बचाने के लिए कई कारण बताने या बहाना बनाने से कोई फायदा नहीं है, और एकमात्र सच्चाई यह है कि नूह मतवाला हुआ अर्थात पाप किया। अब हो सकता है कि आप जो मसीही हैं मदिरा पान या नशा नहीं करते हैं, परंतु क्या मैं आपसे कहूं, हो सकता है कि आप और मैं शरीर में इस कदर जी रहे हैं जिसके कारण से हम परमेश्वर को नाखुश कर रहे हैं, जैसे नूह ने किया था। मैं सोचता हूं कि इस पृथ्वी पर जीने के प्रति प्रत्येक कुछ गलत धारणाएं हैं जिसमें हम रह रहे हैं। हम एक उदाहरण को देखना चाहते हैं। हमारे देश ने करोड़ों रुपए खर्च करके मनुष्य को चांद पर भेजा कि मनुष्य वहां रहे, और यह ऐसे लगता है कि वह रहने के लिए बिल्कुल ही अच्छी जगह नहीं है। परंतु इसकी तुलना में हम पृथ्वी पर जीने के लिए बहुत थोड़ा रुपया खर्च करते हैं, लेकिन परमेश्वर को इसकी चिंता है कि वह मुझे और आपको पृथ्वी पर कैसे रखना चाहता है, उसकी परीक्षण देता है। मित्रों, आइए हम उन गलतियों को ना दोहराएं जो पहले इस घटना के सोच विचार में किए गए हैं। हमें इस बात को स्पष्ट करना है कि नूह अपने उद्धार को नहीं खोया। मैं विश्वास करता हूं कि आप इस बात को समझ रहे हैं। नूह ने जो किया वह एक भयानक बात थी और उसके लिए कोई क्षमा या बहाना नहीं था, यह उसके शरीर की दुर्बलता थी, लेकिन फिर भी वह एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति था। तो आइए हम उत्पत्ति 9 अध्याय उसके 26 और 27 पद को पढ़ें। उसने यह भी कहा, शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य हो और कनान उसका दास हो। परमेश्वर येपेत को बढ़ाए, वह शेम के तंबुओं में वास करे और कनान उसका दास हो। मित्रों, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि जब मूसा को यह प्रकाशन मिला तो वह इसराइलियों को कनान देश की ओर ले जा रहा था, और इसराइली लोग शेम के वंशज अर्थात उसके संतान थे। तो आइए हम उत्पत्ति 9 और उसके 28 और 29 पद को भी पढ़ें, जहां पर लिखा है, जल प्रलय के पश्चात नूह 350 वर्ष तक जीवित रहा। इस प्रकार नूह की कुल आयु 950 वर्ष की हुई, तत्पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। मित्रों, इसी के साथ ही अध्याय 9 समाप्त होता है, और अब हम अध्याय 10 में हाम, शेम और येपेत के पुत्रों के बारे में देखेंगे। इस प्रकार से हम इस अध्याय में उन परिवारों है। मित्रों, यदि आप निर्वंश विद्या तथा मानव शरीर रचना विद्या तथा पृथ्वी पर मानव की कहानी के विषय में रुचि रखते हैं तो आपको इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम से पर्याप्त लाभ पहुंच सकता है, और हो सकता है कि आप और अधिक गहराई से इसका अध्ययन करना चाहें। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि श्री H.S. मिलर, जो निर्वंश विद्या में स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की है, उन्होंने उत्पत्ति 10 अध्याय के आधार पर जाति या राष्ट्रों के उद्गम की रूपरेखा तैयार की है। उन्होंने मानव जाति परिवार के लिए 3 भाग बनाए हैं जो नूह के इन पुत्रों हाम, शेम और येपेत से प्रकट होते हैं, और निर्वंश विद्या इसे एक प्रमाण बनाती है। जबकि ना तो हाम के पुत्र और न ही येपेत के पुत्र कभी इसराइल जाति में शामिल हुए हैं। जैसा कि कुछ लोगों का कहना है कि ये दोनों इसराइल की उन दो खोई हुई जातियों में से हैं। तो मित्रों, आइए हम उत्पत्ति 10 उसके 1 पद को पढ़ें, जहां पर नूह के तीनों पुत्रों की वंशावली है। तो आइए हम इसे पढ़ें। नूह के पुत्रों अर्थात शेम, हाम और येपेत की यह वंशावली है। जल प्रलय के पश्चात उनसे पुत्र उत्पन्न हुए। सबसे पहले हम येपेत की वंशावली पद 2-5 में पाते हैं, और उसके बाद हाम की वंशावली जो पद 6-20 पद में है। ये वे विशिष्ट लोग हैं जो सृष्टि के शुरू के दिनों में थे, और अंत में शेम की वंशावली जिसे हम पद 21-32 पद में पाते हैं। मित्रों, इस बात पर ध्यान दें कि संपूर्ण बाइबल में परमेश्वर ने एक ही तरीके को अपनाया है, जहां पर उसने तिरस्कृत वंशावली को सबसे पहले रखा है और उसकी वंशावली के बारे में कुछ शब्द कहे हैं, और इसके पश्चात इस विषय को पूर्ण रीति से छोड़ दिया गया है और पुनः उस विषय पर चर्चा नहीं की गई है, और अंत में स्वीकृत की गई वंशावली को रखा गया है, वंशावली जो यीशु मसीह की ओर ले जाती है। आइए हम येपेत के पुत्रों के बारे में देखें, जिसे हम उत्पत्ति 10 अध्याय उसके 2 पद में पढ़ते हैं। येपेत के पुत्र ये थे, गोमेर, मागोग, मादै, यावान, तूबल, मेशेक और तिरास। श्री एच एस मिलर के रूपरेखा या चित्र के अनुसार सैथियन वासी, दास, रूसी लोग, बुल्गारिया के लोग, बोहेमिया के लोग, ध्रुव, क्रोएशियाई, ये सब मागोग से उत्पन्न हुए हैं। भारतीय और ईरान की जाति, फारस के लोग, अफगानिस्तान और कुर्द देश के लोग मादे से उत्पन्न हुए हैं और एवान से यूनानी, रोमी और रोम की राष्ट्रीयता जैसे फ्रेंच, स्पेनिश, पुर्तगीज और इटली के लोग आदि, जो तिरास से उत्पन्न हुए वे तिरासियन कहलाए। ट्यूटोन्स जर्मनी के लोग और इससे पूर्वी जर्मनी के लोग और यूरोप की जातियां, उत्तरी क्षेत्र के जर्मनी लोग और पश्चिमी जर्मनी के लोग, जिसमें से निकलकर एक ऊपरी जर्मनी और निचली जर्मनी बाहर आता है, उसके बाद एंग्लो सैक्सन और प्राचीन जर्मन जाति और अंग्रेज लोग हैं। मित्रों, यह सच है कि मैं पूरी रूपरेखा को नहीं बता सकता हूं, लेकिन वास्तव में यह बहुत ही रुचिदायक है और आप बहुत से लोगों को इसी पीढ़ी या वंश का कह सकते हैं जिसमें हम सब भी हैं। अब हम उत्पत्ति 10 अध्याय उसके 6 पद के अनुसार हाम के पुत्रों के विषय में अध्ययन करेंगे। लिखा है, हाम के पुत्र तो ये थे, कूश, मिस्र, फूत और कनान। मित्रों, हम यहां पर देखते हैं कि हाम के और भी पुत्र हैं, लेकिन सिर्फ कनान को ही श्राप दिया गया, लेकिन दूसरे पुत्रों को क्यों नहीं दिया गया, इसका उत्तर मैं अभी नहीं दे सकता, इसे हम बाद में देखेंगे। अब कनान से सीदोन उत्पन्न हुआ, तब हित्ती, यबूशी, एमोरी, गिरगाशी और हिवी आदि। और अब हाम के पुत्र कूश से अफ्रीका, इथोपिया, मिस्र और लीबिया आदि देश के लोग बसाए गए। ये सब लोग हेमिटिक भाषा या जाति के लोग थे। यहाँ पर कूश के पुत्रों के कुछ विवरण हैं, जिसे हम उत्पत्ति 10 अध्याय उसके 8 और 9 पद में पढ़ते हैं। कूश निमरोद का पिता हुआ, वही पृथ्वी पर पहला पराक्रमी वीर था। यह यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकारी था, इसलिए यह कहावत चल पड़ी, यहोवा की दृष्टि में निमरोद के समान पराक्रमी शिकारी। उसने पृथ्वी पर पराक्रमी होने की शुरुआत की, वह संसार का एक महान शासक बनना चाहता था और ऐसा करने की कोशिश उसने भी की। वह परमेश्वर की दृष्टि में एक पराक्रमी शिकारी था, इसका मतलब यह नहीं हुआ कि वह जंगली जानवरों का शिकारी था। कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी छोटे बच्चे को चिड़िया मारने वाली बंदूक दे दी जाती है और जब वह बाहर जाता है और एक गौरैये को मारता है, तब लोग कहते हैं कि देखो, वह छोटा निमरोद है, उसने एक गौरैये को मार गिराया। परंतु निमरोद किसी गौरैये को नहीं मार रहा था और न ही अफ्रीका देश के उन जंगली जानवरों का शिकार कर रहा था, परंतु वह मनुष्य की आत्मा का शिकारी था। और इस पद में कहे गए वचन का यही अर्थ है। मित्रों, आगे हम उत्पत्ति 10 अध्याय के 10 पद में पढ़ते हैं, उसके राज्य का प्रारंभ शिनार देश में बाबेल, एरेक, अक्कद और कलने से हुआ। वह शिनार देश में इन बड़े शहरों का संस्थापक हुआ। निमरोद की एक रोचक कहानी है जो संसार की ऐतिहासिक पुस्तकों में पाई जाती है। अलेक्जेंडर हिसलोप ने अपनी पुस्तक दी बाबिलोन में इसकी पृष्ठभूमि को दिया है कि किस प्रकार निमरोद बाबुल के मीनार की कहानी में जिम्मेदार व्यक्ति है। यह वही निमरोद है जिसने जल प्रलय के बाद सभी मानव जाति को एकजुट करने की कोशिश की, अर्थात एक ही देश और भाषा बनाने की कोशिश की, ताकि वह संसार का सबसे बड़ा शासक बन सके। मित्रों, वह एक विद्रोही बाबुल का संस्थापक और मनुष्य की आत्मा का शिकारी था। वह बिना किसी व्यवस्था के था और वह जो संसार का अंतिम शासक मसीही विरोधी आने वाला है, उसका एक प्रतिरूप या छाया है जो अभी प्रकट नहीं हुआ है। मित्रों, सबसे पहला और महान सभ्यता हाम के पुत्रों के द्वारा आया, और हमें इस बात को स्मरण रखने की आवश्यकता है। कुछ वर्ष पहले हमने जो कुछ विद्यालय में सीखा या पढ़ा था, आज हमारे लिए उन पुराने तरीकों को अपनाना एक सरल सी बात हो गई है। अब एक काला आदमी अपनी जाति या वंश के बारे में अधिक जानना चाहता है। मैं उस पर दोष नहीं लगाता, क्योंकि उसे कई हजार वर्ष पूर्व यह मौका नहीं दिया गया था। काले व्यक्ति की कहानी का आरंभ इस पृथ्वी पर दो महान सभ्यताओं को स्थापित करने के द्वारा हुआ। वे हाम के पुत्र के वंशज से थे और निम्रोद भी हाम का ही पुत्र था। मैं इस वंशज को आगे विकसित करने नहीं जा रहा हूं। आप जानते हैं कि हम पवित्र आत्मा द्वारा दिए गए तरीके का अनुसरण कर रहे हैं, जिसमें वह तिरस्कृत वंश को पहले लेते हैं और बाद में उसे छोड़ देते हैं। मित्रों, अब हम दूसरे वंश की ओर मुड़ते हैं, जो हमें अब्राहम के वंशज और तब इसराइली जाति और अंत में यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर आने की ओर ले जाता है। इस वंश का अनुसरण हम पुराने नियम की पुस्तक से ही करेंगे। परमेश्वर यहाँ पर थोड़े समय के लिए बाकी मानव जाति को शुभ विदाई कहते हैं, लेकिन कुछ समय के पश्चात पुनः उनके पास वापस आएंगे। मित्रों, मैं आपको एक उदाहरण शाफिर की पुस्तक वचन की दैविक एकता से देना चाहता हूँ। उत्पत्ति की पुस्तक का 10वां अध्याय बहुत ही ध्यान देने योग्य अध्याय है। इससे पहले कि परमेश्वर अन्य राष्ट्रों को जैसे थे वैसे ही छोड़ दे, उसने इसराइल के साथ व्यवहार करना शुरू किया। अपने चुने हुए लोग, इब्राहिम से लेकर आगे तक के लोगों से जो उस समय तक पृथ्वी पर थे, सभी राष्ट्रों को एक शुभ विदाई देते हैं और यह कहते हुए कि मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए छोड़ने जा रहा हूँ, परंतु मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैंने तुम्हें रचा है, मैंने तुम्हारे पूरे भविष्य को सजाया है और उनके अलग अलग वंशज को खोज निकाला है। मित्रों, उत्पत्ति उसके 10 अध्याय में कुल 70 राष्ट्रों की सूची है, जिसमें से 14 येपेत के वंश से स्थापित हुए हैं और 30 राष्ट्र हाम से। कृपया इस बात को न भूलें कि यह आपको काले रंगों के आरंभ के बारे में एक अलग ही धारणा देती है। और शेम से 26 राष्ट्र उत्पन्न हुए और इस प्रकार 70 राष्ट्रों में इनके वंशों की सूची पाई जाती है। मित्रों, इसे देखकर ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमें दिखाना चाहते हैं कि संसार के राष्ट्रों के साथ उन्होंने क्या किया है। मित्रों, एक प्रश्न यह भी उठता है कि आज संसार भर में गोरे लोग ही क्यों विशिष्ट हैं। यह एक अच्छा प्रश्न है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों वे विशिष्ट हैं। आरंभ में काला व्यक्ति ही था जिसके रंग वंश विशिष्ट थे, और तब शेम के पुत्रों ने इस संसार में दाऊद और सुलेमान राजा के समय एक अद्भुत प्रभाव डाला। और आप पाएंगे कि शेम से अन्य राष्ट्र भी उत्पन्न हुए, जैसे सीरिया, लीडिया और अमेरिका। इसके अलावा जोक्तान से अरबी लोग भी हैं। ये महान राष्ट्र बाद में अस्तित्व में आए। संभवतः हम इस वर्तमान समय में हैं जहां गोरे लोग आगे हैं। मित्रों, मुझे ऐसा लगता है कि ये तीनों प्रदर्शन कर रहे हैं कि चाहे वे हाम के पुत्र हैं या शेम के पुत्र या येपेत के पुत्र, और वे तीनों ही इस संसार पर शासन करने में अयोग्य हैं। मैं यह विश्वास करता हूं कि परमेश्वर हमारे लिए इसे प्रदर्शित कर रहे हैं और यह दिखा रहे हैं कि ये एक अद्भुत बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं और शेम के पुत्रों के विषय में, जो उत्पत्ति 10 अध्याय उसके 21 पद और उसके 25 पद में है। यहाँ लिखा है, फिर शेम की भी जो सब एबेर वंशियों का मूल पुरुष हुआ और जो येपेत का ज्येष्ठ भाई था, पुत्र उत्पन्न हुआ। एबेर के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, एक का नाम पेलेग था क्योंकि उसके दिनों में पृथ्वी बट गई। उसके भाई का नाम योक्तान था। मित्रों, जब मैं इस पद को पिछले बाइबल अध्ययन के समय देख रहा था, तब मैंने पृथ्वी बट गई का क्या अर्थ है इसकी एक अजीब सी व्याख्या को प्राप्त किया, जो इस पृथ्वी पर भौतिक बंटवारे को दर्शाती है कि कुछ समय पहले पृथ्वी भौतिक रूप से एक विशाल महाविपत्ति में से होकर निकली है। मित्रों, ये सारी बातें मूसा हमें पहले से ही इसलिए बता दे रहे हैं ताकि वे हमें अगले अध्याय में बाबेल के मीनार के बारे में बता सकें, और उस समय पृथ्वी बढ़ चुकी थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि साधारण व्याख्या एक ही है जिसे बहुत से लोग चूक जाते हैं, परंतु हम इसे चूकना नहीं चाहते। तो आइए अब हम इस अध्याय के आखिरी पद को पढ़ें। ये अपनी अपनी वंशावलियों तथा जातियों के अनुसार नूह के पुत्रों के कुल हैं। जल प्रलय के पश्चात इन्हीं में से जातियां विभाजित होकर पृथ्वी भर में फैल गई। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल के महान अध्यायों में से यह एक अध्याय है, जबकि हमने इसे बहुत थोड़ी जगह या स्थान दिया है। आप देख सकते हैं कि यह एक बहुत ही अच्छा अध्ययन दे सकता है उनके लिए जो वास्तव में मानव परिवार का निष्पक्ष मूल्य निर्धारण करना चाहते हैं। बहुत से लोगों ने इस विशिष्ट अध्याय को मानव परिवार के निष्पक्ष मूल्य निर्धारण के उद्देश्य से उपयोग किया है। हाँ तो मित्रों, अब 10वां अध्याय भी यहीं पर समाप्त होता है और अब हम 11वें अध्याय में प्रवेश करेंगे और इसमें हम बाबेल के मीनार का निर्माण और शेम से अब्राहम तक की घटनाओं के विषय में देखेंगे। सर्वप्रथम हम बाबेल के गुंबज या मीनार के निर्माण के विषय में देखेंगे, जिसे हम उत्पत्ति 11 अध्याय उसके एक पद में पढ़ते हैं। सारी पृथ्वी की एक ही भाषा तथा एक ही बोली थी। मैं यह नहीं जानता कि उस समय लोग कौन सी भाषा बोलते थे। मेरे एक मित्र जो दक्षिण भारत में रहते हैं, उन्होंने मुझसे एक बार कहा, क्या आप जानते हैं वो कौन सी भाषा बोलती थी? तब उन्होंने कहा कि यह मलयाली या मलयालम भाषा थी। मित्रों, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह कोई अन्य भाषा ही होगी। वास्तव में वह कौन सी भाषा थी यह हम नहीं जानते। मैं विश्वास करता हूं कि जो भी भाषा बोली जाती थी वह अवश्य ही स्वर्ग में बोली जाएगी और वह इस भाषा से भी और अधिक अच्छी होगी जिसे आज हम बोलते हैं, जो एक विशेष संज्ञा और क्रिया, क्रिया विशेषण और विशेषण के साथ होगी। अब हम उत्पत्ति 11 अध्याय उसके दूसरे पद को पढ़ेंगे, जहां पर लिखा है, और ऐसा हुआ कि वे पूरब की ओर से यात्रा करते करते सिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। कृपया यहां पर ध्यान दीजिए कि उन्होंने पूरब की ओर से यात्रा की। इसका मतलब यह हुआ कि मानव जाति पश्चिम की ओर जा रही थी और उन्होंने सिनार देश में एक मैदान पाया जो दजला फरात की घाटी में थी। आगे हम उत्पत्ति 11 अध्याय उसके 3 पद में पढ़ते हैं, उन्होंने आपस में कहा, आओ हम ईंट बनाकर आग में उन्हें अच्छी तरह पकाएं, और उन्होंने पत्थर के स्थान में ईंटों का और चूने के स्थान में मिट्टी के गारे का प्रयोग किया। उस समय उन स्थानों में पत्थर नहीं थे, इसलिए उन्होंने ईंटें बनाई और यही निर्माण उनके वास्तविक चरित्र के बारे में प्रकट करता है। ईंटें आज भी हमारे घर बनाने की सामग्रियों में प्रचलित हैं। उस समय तक ईंट का प्रयोग उसकी व्यवहारिकता के कारण से किया गया क्योंकि इसकी आवश्यकता थी। उत्पत्ति 11 अध्याय उसके 4 पद में हम पढ़ते हैं, और फिर कहा, आओ हम अपने लिए एक नगर और एक गगनचुंबी मीनार बनाएं और हम अपने लिए नाम कमाएं, ऐसा ना हो कि हम पृथ्वी पर तितर बितर हो जाएं। मित्रों, यहां पर ध्यान दीजिए कि उन्होंने कहा, आओ हम अपने लिए एक नगर बनाएं और अपने लिए एक नाम कमाएं, ऐसा ना हो कि हम पृथ्वी पर तितर बितर हो जाएं। उनके पास एक अविलंब अर्थात मैं की बुरी स्थिति थी कि आओ हम अपने लिए नाम कमाएं। मेरे विचार से इस मीनार का एकमात्र उद्देश्य मनुष्यों को एकत्र करने के लिए था। मित्रों, बाबेल का मीनार एक जिगुरात था और दजला फरात की घाटी में बहुत से जिगुरात विनाश हुए हैं। मैंने एक चित्र में ऊर नगर के विनाश को देखा है जहां पहले अब्राहम रहता था। यह पूर्णतः ईंट से बड़ी मजबूती से बना था। इसके चारों ओर एक सड़क या रास्ता था जो चोटी की तरफ जाता था और स्पष्ट रूप से इस चोटी पर एक वेदी थी जिसमें मानव बलि चढ़ाई जाती थी। बाद में बच्चों की भी बलि चढ़ाई जाने लगी। उन्हें एक अति शुद्ध प्रतिभा को चढ़ाया जाता था। ये सब बातें जुगुरत की बात थी या उसकी इतिहास से जुड़ी है, परंतु बाबिल की मीनार के निर्माण के समय यह सामर्थ्य परमेश्वर के विरुद्ध मनुष्यों के विद्रोह को दर्शाता है और स्पष्ट रूप से यह निम्रोद ही था जिसने इसकी अगुवाई की। वह बाबेल शहर को बनाने वाला और स्पष्ट रूप से बाबेल की मीनार को भी बनाने वाला वही था। यह स्थान उसके लिए संसार में एक शासक खड़ा करने का था जो परमेश्वर के विरोध में था। मित्रों, उसे अपने लक्ष्य को स्मरण करने के लिए और अपने सपनों को साकार करने के लिए दो विशेषताएं और कारण अनिवार्य थे। सबसे पहले उसे एक एकता केंद्र चाहिए था जो एक मुख्यालय जैसे हो, और उसे एक राजधानी की भी आवश्यकता थी, एक स्थान जहां लोग एकत्रित हो सके, एक स्थान जहां से देखभाल की जा सके, और इसी कारण से उसने बाबेल शहर को बनाया जो उसके इस संसार में शासक बनने की एक आवश्यकता को पूरा कर सकता था। और दूसरा था, उसे भीड़ जमा करने के लिए एक स्थान चाहिए था जो न केवल भौगोलिक तरीके से परंतु मनोवैज्ञानिक तरीके से भी हो, जो उनमें एक उत्साह को उत्पन्न करे और उन्हें एक झटका, एक प्रेरणा, एक संगीत और युद्ध की पुकार दे, जैसे कि झंडे लिए हुए जवानों के चारों ओर एक भीड़ हो जाए। मित्रों, यहाँ पर एक सम्मोहक और असम्मोहक प्रेरणा होनी चाहिए। वहाँ एक स्मारक होना चाहिए, जैसे लेनिन की कब्र थी, जहाँ कम्युनिस्ट मिलते थे, अर्थात इकट्ठे होते थे। और ठीक उसी प्रकार निमरोद के दिनों में यह बाबेल का मीनार था, जहाँ लोग एकत्रित होते थे। आओ हम अपने लिए एक चुनौती और परमेश्वर के विरोध में विद्रोह है। आगे लिखा है, आओ हम अपने लिए नाम कमाएं। मित्रों, यह उनके अभिमानी उद्देश्य को प्रकट करता है। मित्रों, आइए अब हम देखें कि बाबेल का मीनार क्या नहीं था। यह बारिश के बाढ़ में छुपने का शरण स्थान नहीं था। वह जल प्रलय के पानी से और ऊपर तक नहीं बना रहा था, जैसे कि कुछ व्याख्याकर्ता मानते हैं, और मैं इसे एक वचकना व्याख्या मानता हूँ। लेनिन की कब्र कोई शरण स्थान नहीं थी, जब वोल्गा नदी उसके ऊपर से बहकर जाती थी। यहाँ पर यह मीनार परमेश्वर के विरोध में मनुष्य के घमंड, जिद्दीपन और विद्रोही स्वभाव को प्रकट करती है। परमेश्वर ने मनुष्य से कहा था कि फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ, परंतु इसके बदले में मनुष्यों ने उत्तर दिया कि हमें कुछ नहीं करना है, हम लोग अलग होने नहीं जा रहे हैं, परंतु हम सब एकजुट होकर रहने वाले हैं, हम आपके साथ शुरू से अंत तक हैं। मित्रों, बाबेल का मीनार परमेश्वर के विरोध में था। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि बाबेल का मीनार था, जैसे कि पहले ही मैं कह चुका हूँ कि उस पूरी घाटी में विध्वंस जिगुरत हैं। ये वे स्थान थे जहाँ पर लोग सृष्टि की आराधना किया करते थे, न कि सृष्टिकर्ता की। कुछ जिगुरात गोलाकार और कुछ आयताकार में थे, लेकिन प्रत्येक जिगुरात में चोटी पर जाने का रास्ता था, जहाँ लोग सूरज, चांद और तारों की उपासना करते थे। जब कभी भी वे सूरज, चांद और तारों को देखते थे, तो उन्हें मालूम हो जाता था कि जल प्रलय नहीं होगा, और उन्होंने यह महसूस किया कि जल प्रलय को भेजने में परमेश्वर इच्छुक था। तो मित्रों, आज के इस अध्ययन में हम यहीं पर रुक जाते हैं, और अगले अध्ययन में हम परमेश्वर की, तब तक प्रभु आप सबों की रक्षा करे और आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।